Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila Adhyay 3 Adhyay ka shirshak hai श्री चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर रुकना और प्यार संख्या है 4। उससे पहले 3 है जो हम पहले पढ़ेंगे फिर इसका उच्चारण करेंगे। श्लोक संख्या 1। न्यासं विधाय त्रणयोथ गौरव वृंदावनं गन्तु मना प्रमाद्या राडे भ्रमन शांति पुरे मयित्वा ललास भक्ते रियतम नतोस्मि। अनुवाद। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेमवश वृंदावन जाना चाहते थे, किंतु लौकिक रूप से भ्रमवश वे राड देश में घूमते रहे। बाद में वे शांतिपुर पहुंचे और वहां भक्तों के साथ आनंद पूर्वक रहे। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। तो चैतन्य चरितमृत की एक विशेषता है, कृष्णदास कविराज ने हर एक जो अध्याय लिखा है उस अध्याय का जो सर्वप्रथम श्लोक है वो श्लोक वास्तव में चैतन्य चरितमृत के प्रत्येक अध्याय कई प्रकार से समरी है। सारी लीला को उन्होंने एक श्लोक में सूत्रबद्ध किया है। प्यार संख्या 2। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो, श्रीवास आदि श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तीसरा 26 वत्सर शेष जय माघवास तार शुक्ल पक्ष प्रभु करिल संन्यास। 24वें वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। और प्रयास संख्या 4 जो बोर्ड पर लिखा है मेरे पीछे दोहराइए। संन्यास करे प्रेमावेश चलिला वृंदावन राड देश तीन दिना करिला प्रमाण। संन्यास करे प्रेमावेश चलिला वृंदावन राड देश तीन दिना करिला प्रमाण। संन्यास करे प्रेमावेश चलिला वृंदावन राड देश तीन दिना शब्द संन्यास करे। संन्यास लेने के बाद प्रेम आवेश कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम में चलिला चल पड़े वृंदावन वृंदावन धाम की ओर। राड देशे राड प्रदेश में 3 दिन लगातार 3 दिन करेला किया भ्रमण। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से है। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेमवश वृंदावन के लिए चल पड़े, किंतु भूल से वे लगातार 3 दिनों तक समाधि में राड देश नामक भूखंड में भ्रमण करते रहे। तात्पर्य, राड देश शब्द राष्ट्र अर्थात राज्य से आता है। राष्ट्र शब्द बिगड़कर राड बना। बंगाल का जो भाग गंगा के पश्चिम में है वह राड देश कहलाता है। इसका अन्य नाम पौंड्र देश या पेंडो देश है। पौंड्र शब्द के बिगड़ने पर पेंडो बनता है। ऐसा लगता है कि राष्ट्र देश की राजधानी बंगाल के इसी भाग में स्थित थी। ओम अज्ञानतिमिरान्वश ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकृतां मह्यं ददाति स्वपरान्वितम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये विशेष अध्याय है जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की एक प्रकार से शुरुआत हो रही है। कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के 3 प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो जो आदि लीला है उसमें चैतन्य महाप्रभु का जो विद्या विलास संन्यास लेने तक की जो लीलाएं हैं उनका वर्णन करते हैं, और जो मध्य लीला है उसको विहार लीला कहा जाता है। विहार का मतलब है श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया लेकिन वो एक स्थान में रुके नहीं, एक स्थान में रहे नहीं। तो संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण करना शुरू किया। कभी कभू गौड़ कभू दक्षिण, कभू वृंदावन, कभी वो गौड़ देश बंगाल गए, कभी दक्षिण भारत गए, तो कभी वृंदावन आए। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, उस लीला का वर्णन कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में विहार लीला या मध्य लीला में करते हैं। और वास्तव में जो आखिरी लीला है अंत्य लीला को विरह लीला कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये दिखाया अपने आचरण से कि किस प्रकार से कृष्ण से विरह की अनुभूति की जाए। तो ये जो अलग अलग आचार्य हैं जिन्होंने चैतन्य लीला का वर्णन अपने ग्रंथों में किया है, उन्होंने अलग अलग भागों में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का विभाजन किया है। जैसे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु जब तक गया जाने तक की जो लीलाएं हैं या नवद्वीप में जो उन्होंने पढ़ाई आदि की उसको उन्होंने आदि खंड के रूप में प्रस्तुत किया है, और दूसरा जब चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आकर संन्यास ग्रहण करने तक की जो लीलाएं हैं वो उन्होंने मध्य खंड में वर्णित किया है, और अंत्य खंड उनके संन्यास के उपरांत की जो लीलाएं हैं। तो इस प्रकार से ये आचार्यगण गौर लीला का विभाजन करते हैं, और गौरांग महाप्रभु का ये सर्वोच्च उन्नत जो लीलाएं हैं संन्यास ग्रहण करने की उसका विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। और वास्तव में ये जो संन्यास ग्रहण करने का जो लीला है चैतन्य महाप्रभु का ये विशेष है, और इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया और रूप गोस्वामी को जब मिले रूप गोस्वामी ने उनको दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि आप तो कैसे हो, महापदानी हो। महाप्रभु ने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पास दान देने के लिए कुछ है नहीं, कैसे कहते कि तुम सबसे बड़े दानी हो। तो रूप गोस्वामी बहुत चतुर है। क्या चतुरता है रूप गोस्वामी की? वो चैतन्य महाप्रभु के मन की बात जानते हैं। कौन हो सकता है, मतलब सोच सकते हैं कि रूप गोस्वामी कोई सर्वसाधारण संगी नहीं है, महाप्रभु के अनंत पार्षद है, लेकिन रूप गोस्वामी का अपना विशेष स्थान है। इसी कारण से गौड़िया संप्रदाय के जो वैष्णव गण है उनको रूपानुग कहा जाता है, और हम हर रोज रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। ऐसे रूप गोस्वामी कब मुझे अपने चरण कमल प्रदान करेंगे या चरणों में स्थान देंगे, जो चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानते हैं। केवल जानते ही नहीं, उन्होंने महाप्रभु के मन की इच्छा को इस संसार में स्थापित भी किया। तो ऐसे रूप गोस्वामी है। इसी कारण से हमारा जो संप्रदाय है रूपानुग हमें कहा जाता है, केवल रूप गोस्वामी के कारण। तो ऐसे रूप गोस्वामी चतुर आचार्य हैं, वो चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं नमो महावदन्याय, आप वदान्य हो, सबसे बड़े दानी हो, और आप क्या देते हो? कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो प्रदान कर रहे हो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास लीला है वो वास्तव में जीवों के प्रति चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सप्रेशन ऑफ लव जिसे कहते हैं, महाप्रभु का जीवों के प्रति जो प्रेम है वो कैसे एक्सप्रेस करते महाप्रभु, प्रकाशित करते हैं संन्यास ग्रहण करके। हाँ, ये कोई सर्वसाधारण नहीं है वस्तु। संन्यास ग्रहण किया चैतन्य महाप्रभु ने, इस श्लोकों में इससे आगे भी वर्णन आएगा। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु निकल पड़ते हैं। तो हम चैतन्य महाप्रभु का जो संन्यास लीला है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया, उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित हैं, चैतन्य भागवत के 26वें अध्याय में मध्य खंड के वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला का वर्णन किया है, और कृष्णदास कविराज उसका हिंट देते हैं आदि लीला के अंतिम अध्यायों में, क्योंकि कृष्णदास कविराज पूर्ववर्ती आचार्यों के आचार्यों का उल्लंघन नहीं करना चाहते, गौर लीला का वर्णन करते हुए ये स्थापित नहीं करना चाहते कि मैं कितना गौर लीला का विज्ञाता हूं, ज्ञाता हूं, महाप्रभु के लीलाओं को मैं कितनी अच्छी तरह से जानता हूं। ये कृष्णदास कविराज ने कभी भी अपने लेखनी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया। उनका आचरण कैसे था? सदा विनय पूर्वक सारे आचार्यों के प्रति। तो ऐसे कृष्णदास कविराज आदि लीला में महाप्रभु पहली बार सोचते हैं कि मुझे संन्यास ग्रहण करना चाहिए, और वास्तव में श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आया है 11वें एकादश स्कंद में कि ऐसे अवतार वन में प्रवेश करेंगे, उसका मतलब है संन्यास ग्रहण करेंगे। इवन विष्णु सहस्र नाम में भी विष्णुदेव भगवान चैतन्य का वर्णन करते हैं कि ये संन्यास स्वीकार करने वाले हैं। तो ऐसी संन्यास लीला एक प्रकार से प्रमुख लीला है, जिसमें महाप्रभु ने जीवों का उद्धार किया और दूसरा स्वयं ही भगवत भक्ति के रसों का जगन्नाथपुरी में आस्वादन किया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार संन्यास को अनुमोदन दिया, बल्कि कलयुग में कहा है कि संन्यास ग्रहण करना कलयुग में अलाउड नहीं है। प्रभुपाद कई जगहों में पांच चीजों का वर्णन करते हुए प्रभुपाद लिखते हैं, उस श्लोक को कोट करते हैं, अश्वमेधम गवालंबम संन्यासम पैल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलो पंच विवर्जय। कि कलयुग में अश्वमेध यज्ञ और गौ हत्या करके जो यज्ञ किए जाते हैं वो संन्यास ग्रहण करना आदि, और देवर के द्वारा संतान उत्पत्ति करना, ये सब अलाउड नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों संन्यास ग्रहण करते हैं? केवल एक ही उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु का, और वो था प्रचार करना, जीवों को कृष्ण भावना प्रदान करना। तो चैतन्य महाप्रभु के घर में महाप्रभु दूसरे सन्यासी हैं। पहले तो उनके भाई ने संन्यास ग्रहण किया विश्वरूप ने, और जैसे विश्वरूप संन्यास ग्रहण करके चले गए, और चैतन्य महाप्रभु को एक दिन स्वप्न आ गया, छोटे से बालक थे निमाय, और स्वप्न में क्या देखा कि वो विश्वरूप उनका हाथ पकड़कर उनको भी ले जा रहा है। इसका मतलब ये भी उत्साहित थे संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो जैसे उनके बड़े भाई ने संन्यास ग्रहण किया, तो ये अपने माता पिता के आंसू पोंछते हुए निमाय पंडित कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने माता पिता जगन्नाथ मिश्र और सची माता को कि भाग आएगा विश्वरूप संन्यास करेगा। बहुत अच्छा हुआ विश्वरूप ने क्या किया, संन्यास ग्रहण किया, क्योंकि माता का कुल और पिता का कुल दोनों कुलों का उन्होंने उद्धार किया है। तो महाप्रभु के मन में बचपन से ही संन्यास लेने की योजना उन्होंने बनाई थी, लेकिन अभी उसको मूर्त रूप या जागृत रूप देने के लिए कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रहा था। तो एक दिन जब वो नया गया से वापस आए थे, और अपने घर में ही एक दिन बैठ गए पद्मासन में, और नवद्वीप पे इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि निमाय पंडित जो इतना घमंडी है वो अभी वैष्णव हो गया है, और उसके अंदर इतनी विनम्रता है कि घास से भी अधिक नम्रता की भावना उस निमाय पंडित के अंदर आ गई है। तो कई सारे स्टूडेंट सोचते थे चलते एक दिन उसके घर, देखते ऐसी उसकी विनम्रता है, कैसा वो वैष्णव है। तो ऐसे एक दिन एक स्टूडेंट गया देखने के लिए किस प्रकार से ये निमाय पंडित महान भक्त है या वैष्णव है। तो वो जो विद्यार्थी है निमाय पंडित के बाड़ी में उनके घर में प्रवेश करता है, तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं, एकलीला गोपी भावे जगत ईश्वर वृंदावन गोपी गोपी बले निरंतर। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु एकांत में बैठे थे अपने घर में पद्मासन में, और जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे, गोपी 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 कह रहे थे। ये जो बालक था, ये जो स्टूडेंट था, इसने जब देखा, अरे ये निमाय पंडित तो वैष्णव है, और इसको क्या हो गया है, ये गोपी गोपी बोलते जा रहा है। उन्होंने कहा, निमाय पंडित, शास्त्र हमें अलाउड नहीं करते गोपी गोपी कहने के लिए, शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं क्या बोलने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस बालक ने कहा कि पुण्य जन्मे वे गोपी गोपी नाम लयते, कृष्ण नाम लयले से पुण्य वेद बोले। तो उन्होंने कहा सारे वेद कह रहे हैं कृष्ण के नामों का उच्चारण करो, तुम पंडित होकर गोपी गोपी बोलते जा रहे हो। तो अभी निमाय पंडित को उस विद्यार्थी ने एक प्रकार से बाधा डाले थे उनके भजन में। हाँ, वो जप कर रहे थे, किस नाम का जप कर रहे थे, गोपी गोपी। उनके जपा में जैसे ही बाधा डाला, हम तो ढूंढते कि कोई आए बाधा डालने वाला डिवोटी, यहाँ निमाय पंडित के जपा में जैसे ही बाधा डाला, उनको इतना गुस्सा आया और वो बोलने लगे। किसके बारे में बोलने लगे, कृष्ण के बारे में। ये उस विद्यार्थी ने कहा था कृष्ण का नाम लो, ये गोपियों का नाम उच्चारण मत करो। तो अब इनको गुस्सा आया दो लोगों के प्रति, एक तो कृष्ण स्वयं भगवान उनके प्रति, और दूसरा उस विद्यार्थी के प्रति। सबसे पहले उन्होंने अपना गुस्सा निकाला कृष्ण के प्रति, वो कहने लगे चिल्लाते हुए, वो कृष्ण जो स्त्रियों की नाक कान काटता है, बलि महाराज जिन्होंने आत्मनिवेदन कर दिया, उनके सर में पाव रखकर पाताल में भेज देते हैं, बाली जिनको छल से मारते हैं, तुम कह रहे हो ऐसे कृष्ण का नाम उच्चारण करो। डांटने लगे, कैसे ऐसे कृष्ण
जो वास्तव में उनमें कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है। अकृतज्ञ व्यक्ति के नामों का मैं उच्चारण कदापि नहीं कर सकता, तो ऐसे बहुत गुस्से में आकर, और वास्तव में कौन सी भावना में थे, ब्रज बाला, ब्रज की गोपियों की भाव में थे, तो ऐसे वो चिल्लाने लगे। और उन्होंने फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते अपना हाथ ऐसे साइड में करते ही उन्होंने हाथ में ठेंगा लिया, मीन्स स्ट्रिक्टली डंडा ले लिया, डंडा उन्होंने अपने हाथ में लिया और खड़े हो गए। खड़े होकर उस विद्यार्थी के पीछे भागने लगे मारने के लिए, उसकी पिटाई करने के लिए, पकड़ो 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 कहते हुए, हाँ, क्योंकि वो उनके भजन में क्या डाल रहा था, विघ्न डाल रहा था, बाधा डाल रहा था, उसके पीछे डंडा लेकर भाग गए। और महाप्रभु निमाय पंडित भावावेश में थे, तो वो जो विद्यार्थी दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते और एक ग्रुप था विद्यार्थियों का, उनके बीच में गया। जैसे वो विद्यार्थी वहां गया तो सारे विद्यार्थी कहने लगे, अरे क्या हो गया, इतना तेज गति से तुम दौड़ते हुए आए हो। तो उन्होंने कहा, बाल बाल बच गया, मेरा जीवन बच गया, क्योंकि मेरे पीछे वो निमाय पंडित डंडा लेकर भागा था। तो सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा, बड़ा साधु निमाय पंडित, वो कहते हमने भी सुना है, वो निमाय पंडित तो बड़ा साधु प्रवृत्ति का है, और ऐसा डंडा लड़ाई झगड़ा करना उसके ब्लड में नहीं है। तो ऐसे वो सब आपस में जब बात कर रहे थे तो उन सब ने कहा कि ये जो निमाय पंडित है वो अपने आप को समझता क्या है, क्योंकि उसे उसे क्या अधिकार है, शास्त्र तो कृष्ण के नामों का जप करने के लिए कह रहे हैं, और वो शास्त्रों से विहित नामों का जप कर रहा है, उच्चारण कर रहा है, और इतना ही नहीं वो हमें गालियां भी दे रहा है। वो क्या राजा है, हम भी तो ब्राह्मण की संतान है, वो हमें क्या शूद्र की संतान समझता है। तो ऐसा लंबा चर्चा होता है, और वो सब फिर वो सोचते हैं कि अभी हम निमाय को पाठ पढ़ाएंगे, यदि अगली बार से कुछ हमारे पीछे ऐसी हरकत करेगा तो हम उसे दंडित करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु या निमाय पंडित ने ये सुना, चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो गए, और उस दुखी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के बीच में बैठ गए एक दिन। और फिर महाप्रभु ने एक विशेष श्लोक बोला, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, करेल पिपली खंड कफ निवारिते उलटिया आरो कफ बाड़ी लदेहते। और ये बोला और महाप्रभु जोर जोर से हंसने लगे, और जितने भी आसपास श्रोता बैठे थे उनके भक्तगण, वो ये बोलकर क्यों हंस रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और सारे लोग भयभीत हो गए थे। तो एक ही व्यक्ति ने समझ लिया इस श्लोक का अर्थ, वो थे नित्यानंद प्रभु। रूप गोस्वामी एक एक्सपर्ट है महाप्रभु के श्लोकों का अर्थ समझने के लिए, और दूसरे हैं नित्यानंद प्रभु। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु समझ गए, और उसका अर्थ क्या था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, करेला पिपली खंड, पिपली खंड आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कफ यदि बहुत बढ़ता है तो उसका निवारण करने के लिए उसको ग्रहण किया जाता है। महाप्रभु ने कहा यह औषधि का प्रभाव तो कफ निवारण के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये औषधि ग्रहण करने से कफ की मात्रा और बढ़ गई। इसका मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सोचा मैं तो इस जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं या आया था, लेकिन ऐसी चीज नवद्वीप में हो रही है कि ये लोग मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, मुझसे द्वेष कर रहे हैं, मुझे मारने की योजना बना रहे हैं, जिसके कारण मैं इनका उद्धारक नहीं हूं, बल्कि मैं क्या हूं, इनका संहार करने के लिए ही आया हूं। ऐसा महाप्रभु एक प्रकार से सोचने लगे, और चैतन्य महाप्रभु बहुत अधिक विषाद हमें डूब पड़े। और उस समय चैतन्य महाप्रभु को यह विचार आया कि वास्तव में इन जीवों का मुझे उद्धार करना है तो मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, मुझे क्या करना होगा, संन्यास आश्रम को स्वीकार करना पड़ेगा। तो फिर पहली बार अपने हृदय को खोलते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के सामने, और उन्होंने कहा, प्रभु शीघ्र छाड़ी बेना घर, मीन्स हे नित्यानंद प्रभु, मैं क्या करने वाला हूँ, जल्द ही अपने घर को छोड़ने वाला हूँ। तो नित्यानंद प्रभु जैसे ये सुनते हैं वो रो पड़ते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, ए सुंदर केशर हाइव अंतर्धान, ये सुंदर केश आपके इतने सुवर्ण मंडित हैं, ये तो चले जाएंगे। हाँ, उनको महाप्रभु के हर चीज से आसक्त थे नवदीप के भक्तगण। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये अत्यधिक दुख होगा नवदीप वासियों को यदि आप संन्यास ग्रहण करके नवदीप को छोड़कर चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एक ओर लेते हैं और नित्यानंद प्रभु को कहने लगते हैं कि हे नित्यानंद, मैं सोच रहा था कि मेरे एक गुण का वर्णन करने से सारे जीव मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये सारे जो विद्यार्थी गण हैं, इन्होंने एक योजना बनाई है, केवल सोचने मात्र से हजारों करोड़ों जन्मों के लिए ये सारे जीव नरक गामी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को सर्वप्रथम अपने हृदय की बात बताते हैं कि मैं इस नवद्वीप को छोड़कर, घर को छोड़कर संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। और महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करने की बात करते थे तो हमेशा दो शब्द बोला करते थे। महाप्रभु कहते हैं, देख कालेश का सूत्र सब मुड़ाया, भिक्षा करे बेड़ाए मो संन्यास करिया। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि देखो, कल मैं क्या करूंगा, शिखा सूत्र सब मुंडाया, मतलब महाप्रभु उस समय तो जो शंकराचार्य का प्रदत्त जो सन्यास है, एक दंडी सन्यास है, वो स्वीकार्य था या वो बहुत अधिक प्रचलित था। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं शिखा और सूत्र का परित्याग करूंगा। जो एक दंडी सन्यासी है वो जनेऊ नहीं रखते, शिखा नहीं रखते, पूरा सर अपना मुंडित करते हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने कहा कि मैं शिखा सूत्र का त्याग करूंगा और घर घर में भिक्षा यापन करूंगा, सब लोगों के घर में जाकर जे जे जने चाहे आछे मोरे मारे बारे भिक्षु कहाए मुकाले ताहा रद्यारे। महाप्रभु ने कहा, जो जो जीव मुझे मारना चाहता है मैं संन्यास ग्रहण करके उसी के घर जाऊंगा। ये महाप्रभु की वदान्यता है, कौन कर सकता है। ऐसे महाप्रभु ने कहा, उन्हीं के घर जाऊंगा और उनसे क्या करूंगा, भिक्षा की याचना करूंगा। तबे मोरे देखी से हरी भिक्षरान यही मत धारी बस सकल भगवान। और जब मैं उनके घर में जाऊंगा, भिक्षा की याचना करूंगा, तो वो सारे लोग मेरे चरणों में गिरेंगे। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक रूप से संन्यास आश्रम को हर कोई सम्मान या आदर प्रदान करता है। महाप्रभु ने कहा, ये जीव केवल मुझे एक प्रणाम करे उतना ही काफी है उनके भव बंधन को खत्म करने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, संन्यास ग्रहण करके मैं सारे जगत का उद्धार करूंगा, त्रिभुवन का उद्धार करूंगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु के पास चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम अपने हृदय को खोलते हैं और ये सुनकर नित्यानंद प्रभु का जो हृदय है विदीर्ण हो जाता है। और नित्यानंद प्रभु कहते कि आप स्वतंत्र हो, कौन है इस संसार में जो आपको रोक सकता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करते हैं और नित्यानंद प्रभु ये सोचकर कि सची माता इस संसार में जीवित रहेगी या नहीं, ये सोचकर ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो जाते हैं और वहां रोते हुए गिर पड़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु उनको छोड़कर फिर दूसरे भक्त के पास जाते हैं। तो नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु अपने प्रिय जनों के पास जाते हैं और उनको वर्णन करते हैं कि मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। हाँ, सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु और दूसरे हैं मुकुंद। हाँ, जो मुकुंद चैतन्य महाप्रभु के लिए कीर्तन करते थे। महाप्रभु को जब नृत्य करना होता था तो चैतन्य महाप्रभु एक ही डिवोटी की ओर इशारा करते थे, वो थे मुकुंद नवद्वीप में। और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु स्वरूप दामोदर के प्रति इशारा करते थे, स्वरूप दामोदर तुम गाओ मैं अभी नृत्य करूंगा। तो ऐसे मुकुंद के पास गए और मुकुंद चैतन्य महाप्रभु को देखकर अत्यधिक आनंदित हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले गाओ किछु कृष्ण रमंगार, मुकुंद गायन प्रभु सुनिया विवर। महाप्रभु ने कहा, प्रभु बोले गाओ किछु कृष्ण रा मंगल। प्रभु ने कहा है मुकुंद कृष्ण का गुणगान करो, तो मुकुंद गाने लगते हैं और चैतन्य महाप्रभु भावावेश में नृत्य करने लगते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु मुकुंद को कहते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, हे मुकुंद मैं बहुत विशेष बात तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं इस संसार को छोड़कर जा रहा हूं। गारी हस्ता में छाड़े बाबू सुने छेद, शिखा सूत्र छाड़े बा चले बा जैन भेद। सबके पास जाते तो ये दो शब्द यूज करते हैं, शिखा सूत्र। तो शिखा सूत्र बोलने मात्र से सबको ये पता चलता था कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। गारी हस्त मीन्स गृहस्थ जीवन। महाप्रभु ने कहा कि मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ने वाला हूं, और मुकुंद जैसे ही सुनते हैं वो दुखी हो जाते हैं और मुकुंद कहते हैं कि आप जाने ही वाले हो तो मैं कीर्तन करना चाहता हूं, आप उसमें और अधिक नृत्य करो। तो मुकुंद कीर्तन करने लगते हैं, महाप्रभु नाचते हैं। फिर महाप्रभु उनके घर से निकलते हैं तो सोचते हैं किसके पास जाओ, तो गदाधर के पास जाते हैं, गदाधर पंडित के पास। तो गदाधर पंडित के घर में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो चैतन्य महाप्रभु को वो आदर से उनका स्वागत करते हैं, गदाधर उनके चरणों में गिरते हैं और गदाधर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अब शिखा और सूत्र का त्याग करके माथा मुंडन करने वाला हूं जल्द ही। तो गदाधर तो आश्चर्यचकित होते हैं, अभी अभी तो आपका विवाह हुआ है, अभी अभी तो आपके घर में विष्णु प्रिया ने आगमन किया है, कुछ ही महीने हो गए हैं और अभी क्या कर रहे हो आप, संन्यास ग्रहण करने की बातें कर रहे हो। तो गदाधर बहुत दुखी हो जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं गदाधर का हृदय ऐसा विदीर्ण हो गया मानो जैसे उनके सर पर वज्रपात हो गया हो। तो ऐसे गदाधर पंडित ने जब सुना तो गदाधर पंडित डांटने लगे। गदाधर पंडित के पास अधिकार है चैतन्य महाप्रभु को डांटने का। चैतन्य महाप्रभु को कहा, ये जो संन्यास ग्रहण करना, दंडा हाथ में धारण करके संसार में घूमते रहना, क्या इससे ही कृष्ण मिलेंगे, कौन से शास्त्र कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए। महाप्रभु को कहते हैं तो वर्णाश्रम का भाग है, सन्यासी किवान्यासी किवा विप्र, चाहे सन्यासी हो गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, सबके लिए एक समान अधिकार है कृष्ण भक्ति का। तो वो डांटने लगे केवल सन्यास ग्रहण करने से कोई कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है या सुनिश्चित नहीं है। और उन्होंने कहा क्या गृहस्थ आश्रम में कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं हो सकती, गृहस्थ डिवोटीज क्या वैष्णव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल नहीं पा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए और गदाधर पंडित कहने लगे कि आप वास्तव में अपनी माता का वध करने की योजना बना रहे हो, आप अपनी पत्नी विष्णुप्रिया को मारना चाहते हो और दूसरा किसे, सची देवी को मारना चाहते हो, क्योंकि अभी अभी तो कुछ सालों पहले ही आपके पिता जगन्नाथ मिश्र इस संसार से चले गए हैं और विश्वरूप ने भी संन्यास ग्रहण किया है, तो आप वास्तव में योजना बना रहे हो अपनी माता का वध करने की। तो चैतन्य महाप्रभु को कहने लगे कि ये जो मुंडन करने से यदि कृष्ण आकर्षित होंगे तो फिर तुम संन्यास ले सकते हो, या तुम्हें बहुत मुंडन करने से सुख चैन मिलेगा। गदाधर ने कहा तो जाओ संन्यास ग्रहण करो। तो गदाधर के ऐसे कर्कश वाक्य सुनकर चैतन्य महाप्रभु एक प्रकार से चुप हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु के सारे प्रिय भक्तों को पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने वाले हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु एक दिन सारे भक्तों के बीच में बैठकर अपने प्रिय भक्तों को अपने संन्यास लीला का वर्णन करते हैं, संन्यास ग्रहण की बात करते हैं। तो भक्तों ने कहा कि आप नवद्वीप को छोड़कर चले जाओगे तो नवद्वीप के भक्त लोग किसके साथ संकीर्तन करेंगे, किसके साथ कृष्ण कथा आदि श्रवण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो हर युग में अवतरित होता हूं और इस युग में नवद्वीप में मेरे दो अवतार हैं। हम महाप्रभु कहते हैं ये मता मोर आछे द्वि अवतार कीर्तन आनंद रूप हरि वे हमार। तो वो दो अवतार महाप्रभु के हैं, एक है कीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरा है आनंद। आनंद में भक्तों के सन में आकर हम कृष्ण का गुणगान करना और कृष्ण के गुणगान को श्रवण करना। तो गदाधर पंडित और ये सारे भक्त जब चैतन्य महाप्रभु के इस संन्यास की वार्ता को सुनते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं और अत्यधिक दुख अनुभव करते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु के संन्यास का वर्णन पूरे नवद्वीप में फैला और सुनते सुनते इस सची माता के कानों में भी चला गया। सची माता सुन के दुखी हो गई। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनको प्रचार करते हैं, उनको कहते कि जब भी मैं अवतार ग्रहण करता हूं तुम माता के रूप में इस जगत में प्रकट होती हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मुकुंद गदाधर सची माता आदि को बताते हैं मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूँ। और फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी मुझे संन्यास का दिन निश्चित करना है, कौन से दिन मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। तो वो संन्यास ग्रहण करने का दिन महाप्रभु ने निश्चित किया और उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अपने पास बुलाया। नित्यानंद प्रभु को बुलाकर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे सुन सुन नित्यानंद स्वरूप गोसाय एक कथा भांगी में सबे पांचे ठाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे नित्यानंद प्रभु मैं संन्यास कौन से दिन ग्रहण करने वाला हूँ ये केवल पांच लोगों को बताना। नवद्वीप में पांच लोगों के अलावा किसी को मत बताना कि मैं कब कौन से दिन नवद्वीप को छोड़कर बाहर जाने वाला हूँ। यही संक्रमण उत्तरायण दिवस निश्चय चले बगावे करते संन्यासे। ये जो मकर संक्रांति का दिन आने वाला है अभी तो उस दिन मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। इंद्राणी निकटे कोटाया नामे ग्राम तथा चे केशव भारती शुद्ध नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं कि अभी अभी ये योजना बनाई थी। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि एक बार एक केशव भारती नामक सन्यासी नवद्वीप का विजिट करने आए थे। तब चैतन्य महाप्रभु स्कॉलरली पंडित थे, निमाई पंडित, गया से वापस भी नहीं आए थे। तब ये केशव भारती जो सन्यासी है उनसे वो मिले, उनसे डिस्कस किया और उनको पूछा कहाँ रहते हो आप। उन्होंने कहा मैं कटवा में रहता हूँ जहां मेरा आश्रम आदि है। तो उनसे अपना जान पहचान बढ़ाया ताकि ये सन्यासी आगे काम में आ सकता है। कौन से काम में? सन्यास देने के काम में, पहले से पहचान करवाई। तो ऐसे महाप्रभु बहुत होशियार है, एक्सपर्ट है। तो फिर बाद में नित्यानंद प्रभु को कहते हैं मकर संक्रांति के दिन मैं कटवा में जाकर केशव भारती से क्या करूंगा, संन्यास ग्रहण करूंगा। तुम क्या करो, पांच लोगों के पास जाओ और उनको ये बताओ, उनके अलावा किसी को नहीं। तो कौन है वो पांच लोग? वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अमर जननी गदाधर ब्रह्मानंद श्री चंद्र शेखराचार्य अपर मुकुंद। अमर जननी मेरे माता सची माता, अब उनको जाकर बताओ, गदाधर पंडित को बताओ, ब्रह्मानंद को बताओ, चंद्रशेखर आचार्य और मुकुंद कीर्तन करने के लिए संन्यास सेरेमनी में। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जैसे ही कहा तो नित्यानंद प्रभु दौड़ते हुए इन पांचों के पास गए और महाप्रभु दूसरे दिन निकलने वाले ब्रह्म मुहूर्त में। तो आज का जो दिन है चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि नवद्वीप के भक्तों को मैं सर्वाधिक आनंद प्रदान करूंगा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु गंगा का दर्शन आदि करके सारे भक्तों को अपने पास बिठाया संध्या के समय में। और उस दिन ऐसा हो रहा था नवद्वीप में मानो सारे देवी देवतागण या स्वर्ग या अलग अलग लोगों से नवद्वीप में लोग आ रहे हो। नवद्वीप का हर वासी उस दिन चैतन्य महाप्रभु को मिलने आ रहा था और वो आखिरी दिन था। और खाली हाथ नहीं आ रहा था, कोई माला लेकर आ रहा था, कोई चंदन लेकर आ रहा था, कुछ फ्लावर्स लेके आ रहा था, कुछ फ्रूट्स लेके आ रहा था और कुछ भेंटे लेकर आ रहा था, और वो चैतन्य महाप्रभु को देते जा रहा था। चैतन्य महाप्रभु इन सारे भक्तों को लेकर बैठ गए और अपने गले में इतनी माला हो गई थी। वृंदावन दास ठाकुर कहते आपन गला रा माला सबा कार दिया, अपने गले की माला सबको पहना दी। आज्ञा कर प्रभु सबे कृष्ण गाव गया, सबको माला पहनाए और महाप्रभु ने सबको आज्ञा दी, क्या गाओ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाप्रभु ने सबसे अंतिम उपदेश नवद्वीप के भक्तों को दिया, और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश जो चैतन्य महाप्रभु के मुख से निकला नवद्वीप के भक्तों को। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उनका आखिरी दिन था नवद्वीप में, जब वो विशेष संदेश उनको प्रदान करते हैं। महाप्रभु ने कहा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु ना बावियान। उन्होंने कहा कृष्ण के बारे में बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण के नामों का उच्चारण करो और कृष्ण के बिना किसी और चीज का चिंतन मत करो। और फिर एक बात महाप्रभु ने कही जदिया मा प्रति स्नेह था के सबाकार तबे कृष्ण व्यतिरिक्त नागाए बेयार। और महाप्रभु ने कहा कि हे नवद्वीप वासी हो, आप सही में मुझसे प्रेम करते हो तो कैसे पता चलेगा मुझे कि आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करते हो? तो महाप्रभु ने कहा इससे पता चलेगा कि कृष्ण के अलावा किसी और गीत का गान नहीं करना, मतलब कृष्ण की महिमा के अलावा किसी और चीज की महिमा आपके जीवा से नहीं निकलनी चाहिए। तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाई बेयार, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला के अलावा किसी और चीज का गान मत करो। कि शयने कि भोजने कि बा जागरने अहर्निश चिंत कृष्ण बलह बदने। महाप्रभु ने कहा चाहे सोते हुए, भोजन करते हुए, जगते हुए, दिन रात कृष्ण का चिंतन करो या कृष्ण के नामों का वर्णन अपने मुख से करो। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शुभ दृष्टि सारे नवद्वीप वासियों पर डाली और फिर सबको कहा कि आप अपने अपने घर चले जाओ। इस प्रकार सारे लोग आनंद के सागर में डूबे हुए थे और सब लोग अपने अपने घर में चले गए। और अभी किसी को पता नहीं है कि ये आज महाप्रभु का आखिरी दिन है नवद्वीप का, कल से हम चैतन्य महाप्रभु को नवद्वीप में नहीं देखने वाले। तो सारे भक्त चले गए हैं तो सबसे लेट एक डिवोटी पहुंचता है, जैसे कुछ डिवोटी सबसे आखिरी में क्लास में पहुंचते हैं। तो अभी अभी महाप्रभु की क्लास खत्म हो गई थी तो उस समय आखिरी भक्त पहुंचे और वो कौन थे? कोला वेचर श्रीधर। कोला वेचर श्रीधर इतने बिजी थे कृष्ण नाम संकीर्तन आदि में, वो लेट हो गए महाप्रभु से मिलने के लिए। और महाप्रभु को मिलने जाना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, सो जब क्या लेके जाओ? तो बहुत अधिक गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के ऊपर एक लता क्या कहते हैं पंकिन कद्दू आ गया था। तो उन्होंने देखा कद्दू इतना बड़ा सा है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा महाप्रभु को मिलने जा रहा हो तो क्या लेके जाओ? बंगाली में लाऊ कहा गया है, एक लाऊ हाते करे सुकृत श्रीधर हे नहीं समय आसी हाई लागोचर। एक लाओ, एक पंकिन अपने कद्दू अपने हाथ में लेकर दौड़ते हुए, कहाँ रहते थे वहां? सीमांत द्वीप के वहां महाप्रभु या योगपीठ में रहते हैं, वहां से श्रीधर दौड़ते हुए आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। लाओ भेट देखी हासे श्री गौर सुंदर कोथाई पाईला प्रभु जिज्ञासे अंतर। महाप्रभु ने जैसे ही उस कद्दू को उनके हाथ में देखा, मुझे भेंट के रूप में दे रहा है, तो महाप्रभु जोर जोर से हंसने लगे। महाप्रभु ने कहा श्रीधर ये कद्दू कहाँ तुम्हें प्राप्त हुआ? श्रीधर ने कहा ये तो मेरे कुटिया के ऊपर ही प्रकट हो गया था और जिसको देखकर मैं आ गया हूं। तो महाप्रभु सोचने लगे मैं तो कल सुबह सुबह जा रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में निकलने वाला हूँ। और फिर ये जो श्रीधर का जो भेंट है और इसमें इतनी प्रीति है, इसका भोजन मुझे नहीं मिलेगा, जैसे सुदामा के चावल कृष्ण ने मांग के खाए, वैसे ही श्रीधर की ये जो भेंट थी, महाप्रभु ने सोचा कल मैं चला जाऊंगा तो श्रीधर ने इतने प्रेम के साथ हाँ ये कद्दू लेके आए हैं, इसको कैसे मैं तिरस्कृत कर सकता हूँ, इसको मुझे ग्रहण करना चाहिए। तो उसी समय दूसरा भक्त आके पहुंच गया, वो दूध लेके आया था। तो महाप्रभु ने अपनी माता जननी सची को आज्ञा दी, क्या करो आप इसका हसिया ठाकुर बले बड़ा भाला है। महाप्रभु हंसने लगे, उन्होंने कहा अरे बहुत अच्छा हो गया, सही कॉम्बिनेशन है कद्दू और दूध, दुग्ध लाओ पाक गया कर हसकर। उन्होंने कहा हे माता ये कद्दू और दूध का स्वीट बनाओ जिसको मैं ग्रहण करूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु संध्या के द्वितीय प्रहर में उसको ग्रहण करते हैं और फिर अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। तो वह विष्णु प्रिया देवी भी चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर कहते हैं, फिर विष्णु प्रिया देवी जो हमेशा सर पर पल्लू डाल के ढक के रहती थी और घर के अंतपुर में खड़ी रहा करती थी, तो उन्होंने धीरे धीरे कई आवाजें उनके कान में आ गई थी। आजकल पूरे नवद्वीप में एक ही चर्चा का विषय है कि निमाय पंडित संन्यास ग्रहण करने वाला है। तो सबसे अधिक दुख में स्थिति तो विष्णु प्रिया की थी। तो विष्णु प्रिया ने सोचा कुछ भी हो जाए आज मैं पूछ के ही रहूंगी संन्यास ग्रहण करने वाले हो या नहीं। हाँ, तो फिर ये शयन कक्ष में जैसे महाप्रभु गए, महाप्रभु लेटे हुए थे, तो विष्णु प्रिया आकर उनके चरणों में बैठ जाती है, उनके चरणों को लेकर अपने छाती में रखती है और उनको कहती है बताइए क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो संन्यास ये पहली बार सुन रहा हूं। महाप्रभु छुपाते थे, महाप्रभु ने कहा संन्यास तो नहीं ग्रहण करने वाला, किसने कहा ये सब लोग कुछ भी बोलते रहते हैं पूरे नवद्वीप में, कहते सो जाओ मध्य रात्रि हो गई है। तो महाप्रभु सो गए लेकिन विष्णु प्रिया की नींद उड़ गई थी। तो विष्णु प्रिया देवी को तो नींद नहीं आ रही थी, तो फिर से जग गए और महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और अपने सर में रखा, बताइए बताइए क्या आप संन्यास ग्रहण करने वाले हो। अभी महाप्रभु के पास वो सामर्थ्य और शक्ति नहीं थी मना करने की या झूठ बोलने की। महाप्रभु ने कहा हाँ मैं संन्यास ग्रहण करने वाला हूं। तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं विष्णु प्रिया देवी की और विष्णु प्रिया देवी क्रंदन करने लगती हैं। महाप्रभु उनको प्रचार करते हैं, लंबा सा लेक्चर देते हैं, बेड पर ही बैठे हैं। लोचनदास ठाकुर ने पूरा एक अध्याय लिख दिया और महाप्रभु ने पूरे संसार के देह संसार कितना कष्टप्रद है, दुखों का सागर है, ये सब का वर्णन महाप्रभु करते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि हे विष्णु प्रिया तुम तो मेरे साथ इस विशेष लीला में भाग लेने के लिए प्रकट हो गई हो। विष्णु प्रिया देवी ने कहा आप संन्यास ग्रहण करोगे आपके चरण तो कमल के भांति हैं, मैं सहन नहीं कर पाऊंगे, पत्थर और कांटे उसमें चुभेंगे। तो ऐसे बहुत सारा वर्णन प्राप्त होता है। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो नवद्वीप को छोड़कर चले जाऊंगा और हे विष्णु प्रिया इस संसार में सारी चीजें क्या है नश्वर है अशाश्वत है और दो ही चीजें शाश्वत है जिनको जीवन में पकड़ के रखना चाहिए, जिनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। एक है कृष्ण का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और दूसरा है भगवान के जो भक्त हैं। तो हे विष्णु प्रिया ये दोनों वास्तव में शाश्वत है, जो आश्रय ग्रहण करने योग्य है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उनको उपदेश दिया और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और उठकर बाहर आते हैं अपने बाहर के रूम में। तो वह हरिदास ठाकुर और गदाधर पंडित सो रहे थे, उनको तो बताया नहीं था, गदाधर को तो बताया था इनके द्वारा, किनके द्वारा नित्यानंद प्रभु के द्वारा हरिदास ठाकुर की बड़ी डिजायर थी, मुझे भी आना है संन्यास सेरेमनी देखने। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु इस समय नहीं ले जाने वाले थे, इवन शांतिपुर से भी नहीं ले जाने वाले थे, उनको स्वयं ही आना था जगन्नाथपुरी। तो ऐसे हरिदास ठाकुर तो मना किए, दोनों वहां थे और महाप्रभु आए तो देखा सची माता दरवाजे में खड़ी है और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मानो एक पत्थर की मूर्ति हो जिसमें कोई उसके अंग हिल नहीं रहे हैं, एक ही चीज हिल रही थी और वो क्या थे, उनके आंखों से जो अश्रु धाराएं बह रही थी वही हिल रहा था, बाकी कुछ और हिल नहीं रहा था। चैतन्य महाप्रभु आ गए सची माता के पास। सची माता के पास आते ही चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम आदि किया और सची माता को उन्होंने नमस्कार किया और सची माता की परिक्रमाएं की और परिक्रमा करके चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप को छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े। निकल पड़ते ही चैतन्य महाप्रभु ने गंगा में जंप मारी और तैरते हुए दूसरी ओर चले गए। वहां बाकी डिवोटीज उनका वेट कर रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि वहां से वो कोई धीरे धीरे पैदल नहीं गए, संन्यास लेने की इतनी लालसा थी, इतना उत्साह था कि महाप्रभु जैसे मैराथन में दौड़ होती है वैसे ही दौड़ पड़े। कहा कंटक नगर या कटवा की ओर। अभी हम नवद्वीप से गाड़ी से जाते हैं तो हमें एक डेढ़ दो घंटे लगते हैं, दो ढाई घंटे लगते हैं। चैतन्य महाप्रभु दौड़ते हुए गए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं और सुबह सुबह, क्योंकि नवद्वीप में महाप्रभु के जो भक्तगण थे वो सुबह सुबह महाप्रभु के पास आते थे, उनका दर्शन करने, उनके साथ गंगा स्नान करने जाते थे। तो बहुत सारे भक्त आ गए और जैसे ही आ गए तो देखा आज सची माता दरवाजे में खड़ी है निस्तब्ध होकर और बहुत दुखी होकर खड़ी है। तो जैसे भक्त वहां आए और भक्तों ने देखा महाप्रभु कहाँ है, निमाय पंडित को था है, कहाँ है निमाय पंडित। सची माता ने कहा कि अभी हम वो यहाँ नवद्वीप में नहीं रहे, वो नवद्वीप को छोड़कर चले गए और ये अभी ये घर अभी मेरा नहीं है, विष्णु का और वैष्णवों का है। हाँ, ये जो घर, ये धन, ये संपदा सब कुछ निमाय पंडित छोड़कर चले गए हैं। तो ऐसे नवद्वीप के निवासी क्रंदन करने लगे और रोते हुए सबने सोचा कि हम अपना जीवन क्यों धारण कर रहे हैं, हमें तो गंगा में जाकर अपना जीवन त्याग देना चाहिए, यदि हमारे जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं है। तो ऐसे ही नवद्वीप में हर कोई दुख व्यक्त कर रहा था और फिर चैतन्य महाप्रभु यहाँ दौड़ते हुए कटवा में पहुंचते हैं। बाद में वो कटवा जो विलेज है, टाउन है, सची माता ने उसको नाम दिया कंटक नगर, मतलब कांटे जैसा चुभता है। मेरे बेटे का संन्यास वहां हुआ है, कौन सी माँ चाहेगी कि अपना बेटा संन्यास ग्रहण करे। सारी माताएं दोनों हाथ ऊपर करके खुश रहेगी कि दूसरे का बेटा सन्यासी बन जाए, भक्त बन जाए, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल जाए किसको सहन नहीं होता। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का जो दुख है सची माता को था और चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचते हैं कंटक नगर और कटवा में पहुंचते हैं तो वहां न्यूज फैल गई कि निमाय पंडित का सन्यास कटवा में होने वाला है केशव भारती के द्वारा। क्यों केशव भारती को चूज किया महाप्रभु ने, वो ईश्वरपुरी को भी चूज करते थे, कर सकते थे, परंतु केशव भारती वास्तव में मायावादी सन्यासी थे और उस समय मायावाद सन्यास का प्रचलन था और सबसे अधिक सम्माननीय था। वैष्णव सन्यास एक प्रकार से तिरोहित हो गया था। तो महाप्रभु चाहते थे कि सन्यास ग्रहण करने से लोग आदर और सम्मान देते हैं, जिसके द्वारा प्रचार करना बहुत सरल है। तो महाप्रभु उनसे सन्यास ग्रहण करने के लिए पहुंचते हैं और हजारों हजारों की संख्या में लोग वहां आते हैं, क्योंकि निमाय पंडित के बारे में सबने सुना था, गया से वापस आके जो भक्त बने हैं वो भी सबने सुना था, और हर कोई सोच रहा था निमाय पंडित को देखने के लिए नवद्वीप जाना है, लेकिन सबका जाना नवद्वीप नहीं हुआ था, इसलिए हर कोई सोचता था चलो आज हम संन्यास देखते हैं। तो उसमें और एक डिवोटी जो योजना बना रहे थे उसी दिन नवद्वीप जाने की, हाँ, जिनका नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, आगे चलकर वो श्रीनिवास आचार्य के पिता बने, हाँ, चाकंडी के जो थे। तो ऐसे गंगाधर भट्टाचार्य ने सोचा मुझे नवद्वीप जाना है निमाय पंडित को देखने के लिए, तो वो उसी दिन निकले थे अपने गांव से। और फिर जब जाते जाते कटवा में घुसे तो उनको पता चला सारे लोग भाग रहे हैं। इसने बेचारे उन्होंने पूछा कहाँ भाग रहे हो, हम जा रहे हैं निमाय पंडित का संन्यास देखने, चलना है तुम्हें। तो उन्होंने कहा निमाय पंडित को मिलने तो मैं वहां जा रहा था नवद्वीप में। तो ये भी पहुंच गए, ये जैसे वहां पहुंचे चैतन्य महाप्रभु का संन्यास होने से पूर्व मुकुंद को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था मुकुंद तुम कीर्तन करो। महाप्रभु उठे गंगा में स्नान किया और स्नान करके चैतन्य महाप्रभु आके बैठ गए और अभी उनका मुंडन होने वाला था, सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हाँ मुंडन करना। तो वो मधु जो बार्बर था उसको बुलाया गया, वो अपना वस्त्रा लेकर बैठा हुआ था और वो आया देखा भी महाप्रभु का मुंडन करने के लिए अपना एक हाथ रखता था सर के ऊपर, दूसरे हाथ से वस्त्र चलाने वाला था लेकिन कंपन हो रहा था, आंसुओं की धारा उसके नयनों से बह रही थी और उससे मुंडन करवाना करना उसके लिए कठिन हो गया था। तो ऐसे मधु सुबह से प्रयास कर रहा था मुंडन करने का, शाम हो गई फिर भी मुंडन नहीं हुआ। हाँ तो ऐसे मधु ने फाइनली क्या किया, बाल काटे दिए चैतन्य महाप्रभु के गोल्डन केश, और ऐसे जैसे बाल काटे तो आक्रोश फैल गया। वहां के जो निवासी थे उन्होंने सोचा ये केशव भारती संन्यास दे रहा है, इसके आश्रम को जला देंगे, क्योंकि इतने नवयुवक अभी अभी 24 साल का है जिसके जिसके केश इतने अद्भुत है, जो सब नवद्वीप वासियों को इतना प्रिय है। तो ऐसा सारा वर्णन कर रहे थे यदि इसने संन्यास दिया हाँ तो इसकी खैरियत नहीं है केशव भारती की। तो ऐसे सब चिल्लाए रहे थे, फाइनली चैतन्य महाप्रभु के का मुंडन हो जाता है, चंद्रशेखर आचार्य यज्ञ आदि की व्यवस्था करते हैं और नित्यानंद प्रभु गदाधर मुकुंद जोर जोर से गाते हैं और फिर केशव भारती वहाँ। पहले तो जैसे महाप्रभु पहुंचे थे जिस दिन, तो महाप्रभु ने उनके चरणों में बैठे वो बताना भूल ही गया, चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में बैठे पहुंचते ही केशव भारती के और उन्होंने प्रार्थना की। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अनुग्रह तुमि मोरे कर महाशय, पतित पावन तुमि महाकृपामय। हे महाशय आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए, आप पतितों को पावन करने वाले हैं। तुमि से निवारे पार कृष्ण प्राणनाथ, निरवधि कृष्ण चंद्र बसे तुमान। तो चैतन्य महाप्रभु जानते थे केशव भारती महान कृष्ण भक्त है। महाप्रभु ने कहा तुम ही केवल कृष्ण मुझे दे सकते हो, क्योंकि कृष्ण सदैव तुम में निवास करते हैं। कृष्ण दास बिनु मोर नहे किछुआन, अब मुझे कृष्ण की दासता के अलावा किसी और चीज की आकांक्षा नहीं है। हे केशव भारती आप मुझे ऐसा दान दो कि जिसके द्वारा मेरे हृदय में कृष्ण की दासता वर्धित हो जाए, कृष्ण की सेवा की भावना बढ़े। और वास्तव में सन्यास का मतलब क्या है, कृष्ण की सेवा के प्रति 100% कमिटमेंट। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि सन्यास का मतलब यह है, मायावादी सन्यास एक दंड ग्रहण करते हैं और मायावादियों का विचार है सन्यास दंडो ग्रहण मात्रे न नरो नारायण भवे। दंडा हाथ में ग्रहण करने मात्र से वो सोचते हैं अभी ये नर क्या बन गया है, नारायण हो गया है, ब्रह्म में लीन हो जाना ये उनकी गति है। तो ये मायावादी सन्यास है और मायावादी सन्यासी भगवत सेवा से भागते हैं, जिसके कारण वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जगत मिथ्या इसलिए है क्योंकि सेवा करनी पड़ेगी इसके कारण। लेकिन वास्तव में जो वैष्णव सन्यासी है, वैष्णव गण है, इस जगत को भी कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं। इसलिए लोकनाथ महाराज जब हमारे महाराज जनार्दन महाराज और वैष्णव महाराज को संन्यास दे रहे थे, लोकनाथ महाराज एक एक प्रवचन में कह रहे थे संन्यास का मतलब, कह रहे थे वैष्णव संन्यास, उसमें वो कहते शॉर्टकट में कहते वैष्णव संन्यास मतलब BMW, हाँ BMW कार है तो कहते BMW means विमेंस बॉडी माइंड और वर्ड्स। तो इस प्रकार से जो वैष्णव सन्यासी है वो BMW को अपने साथ स्वीकार करता है कृष्ण की जो सेवा है वो तीव्रता से करने के लिए। और वास्तव में ये वर्ण और आश्रम भगवत भक्ति से परे है, भगवत भक्ति इनसे स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति चाहे सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, उससे मायने नहीं रखता। वो आश्रम उसने केवल स्वीकार किया है अपने भक्तिमय जीवन में उन्नति करने के लिए। हाँ, प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, एक जगह वो कहते हैं अपने डिवोटीज को कहते हैं, संन्यास का मतलब ये नहीं है कि विशेष प्रकार के वस्त्र होने चाहिए या हाथ में डंडा होना चाहिए या विशेष प्रकार का दाढ़ी होना चाहिए सन्यासी हो गए, नहीं। प्रभुपाद ने कहा सूट बूट और कोट और टाई में भी तुम क्या हो सकते हो, सन्यासी बन सकते हो। इसलिए प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स जिन्होंने लंदन में प्रीच किया उन्होंने कहा आप सन्यासी से भी क्या हो, बढ़कर हो। प्रभुपाद अपने उन गृहस्थ शिष्यों को कहते हैं मोर देन सन्यासी, आप लोग सन्यासियों से भी क्या हो, बढ़कर हो। क्योंकि सन्यासी का मतलब है कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूपेण समर्पण। प्रभुपाद वहां कहते हैं कि कृष्ण के प्रति सेवा की भावना का पूर्ण रूपेण समर्पण है वो व्यक्ति, चाहे किसी भी वस्त्र में हो, आश्रम में हो, वो व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है। और प्रभुपाद ने कहा सन्यास आश्रम ऐसा है, सन्यासी के घर में एक ही दरवाजा है, एंट्रेंस गेट है, एग्जिट नहीं है, उसमें से बाहर जाना अलाउड नहीं है, बाकी तीन आश्रम में एग्जिट गेट है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं तो ऐसे सन्यास ग्रहण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचते हैं और महाप्रभु वास्तव में केशव भारती से सन्यास ग्रहण करते हैं। और जैसे महाप्रभु उनके सामने बैठ गए, उनको निवेदन आदि किया, तो केशव भारती उनको देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा ये इतना सौंदर्यवान युवक, इसको मैं सन्यास दे दूंगा तो मुझे लोग मार डालेंगे। तो महाप्रभु ने सोचा, केशव भारती ने सोचा थोड़ा चलो ट्राई करता हूं, बच गया संन्यास देने से। तो उन्होंने कहा देखो मैं संन्यास ऐसे नहीं दे सकता, पहले अपनी माता का और अपनी पत्नी का परमिशन लेकर आना होगा, विष्णुप्रिया और सची माता। तो महाप्रभु ने कहा उतना ही करना है बस। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि महाप्रभु ने अपना मुख मोड़ा और दौड़ने लगे नवदीप की ओर। हाँ, मतलब वो भूत सवार हो गया था सन्यास लेने का, वो कुछ भी कर सकते हैं। केशव भारती का रुको रुको, जैसे इस पल में भी किसी गृहस्थ को सन्यास ग्रहण करना है तो सबसे पहले आपने पत्नी से लेटर लेना होता है, पत्नी परमिशन दे तो उसको सन्यास दिया जाता है। तो वैसे ही केशव भारती ने ट्राई किया कि ये भी अपने पत्नी और माता से कुछ लिखवा के ले आए या परमिशन लेके आए। तो उन्होंने देखा कि ये सन्यास ग्रहण करने के लिए निमाय पंडित कुछ भी कर सकते हैं, मतलब महाप्रभु अपना जीवों के प्रति एक प्रेम का प्रदर्शन है। मतलब महाप्रभु ने जीवों को भगवत भक्ति देने का जो सीमा है उसको लांघ दिया है। महाप्रभु तो करुणा के सागर है, एक जगह बैठे रहते हैं, करुणा का सागर, बाहर नहीं आता सागर। लेकिन महाप्रभु क्या है, वही सागर में जब सुनामी आती है वो सागर बाहर आता है, अपने भक्तों के माध्यम से सारे जगत को कृष्ण भावना प्रदान करता है। तो ऐसे केशव भारती ने कहा कि कल मैं तुम्हें सन्यास प्रदान करूंगा। तो सन्यास का जब दिन आ गया, मुंडन आदि हो गया, तो चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु केशव भारती के पास जाते हैं और उनकी थोड़ी स्तुति करते हैं और स्तुति करके उनको कहते हैं कि मुझे आप दीक्षा दे दो, सन्यास की दीक्षा, मैं कृष्ण का दास बनना चाहता हूं। और फिर केशव भारती को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे सपने में एक मंत्र स्फुरित हुआ था, सपने में मैंने एक मंत्र प्राप्त किया था, वो जो मंत्र है वो मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूं। कि ये सही मंत्र तो है या नहीं। तो क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु केशव भारती के कानों में उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। और वास्तव में आचार्य जन कहते हैं वैष्णव मंत्र से केशव भारती को चैतन्य महाप्रभु दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु उस वैष्णव मंत्र संन्यास में जो मंत्र प्रदान किया जाता है उस मंत्र को स्वीकार करते हैं। और जैसे ही उस मंत्र को स्वीकार करते हैं चैतन्य महाप्रभु नाचने लगते हैं हरि हरि की ध्वनि करते हुए। और फिर वो वस्त्र पहली बार धारण करते हैं। परिले न अरुण वसन मनोहर ताते हर लखोटि कंदर सुंदर। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार सैफ्रॉन वस्त्र धारण किए थे। तो वहां वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कंदर्प कोटि जो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को आकृष्ट करने वाला सौंदर्य महाप्रभु का प्रकट हो रहा था। ऐसे सौंदर्यवान महाप्रभु उस सैफ्रॉन वस्त्र में लग रहे थे। चंदन माला आदि उन्होंने धारण किया था। दंड उनको अभी मिला था। कमंडल भी उनके पास था। ये इसलिए तो नित्यानंद उन्होंने दंड तोड़ा तो उन्होंने कहा अरे मैं तो भिखारी सन्यासी हूं, मेरी संपत्ति क्या है? दंड और कमंडल। तुमने दंड तो वैसे ही तोड़ दिया, हाँ कमंडलू मेरे पास बचा है। आज भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु का वो कमंडलू हमें दिखाई देता है गंभीरा में। तो ऐसे केशव भारती ने जब सन्यास दिया तो सोचा सन्यास में विशेष नाम होना चाहिए क्योंकि विशेष डिवोटी है। कई बार होता है ना कुछ गुरुज होते हैं वो सोचते हैं शिष्य को स्पेशल नाम देते हैं, ये स्पेशल मेरा डिसाइपल है, हाँ तो कुछ ऐसा विशेष नाम सोचते हैं। तो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है। और केशव भारती ने कहा 14 लोकों में मैंने ऐसा वैष्णव नहीं देखा। ऐसा वैष्णव कौन है? निमाय पंडित। हाँ तो उन्होंने सोचा क्या नाम रखो इसका? पाया उचित नाम केशव भारती, प्रभु वक्षे हस्त दिया बले शुद्धमती। माँ भी उनको सरस्वती की कृपा से उनकी जिभा पर एक विशेष नाम स्फुरित हो गया। और उस समय केशव भारती ने चैतन्य महाप्रभु के वक्षस्थल छाती पर हाथ रखा और अभी वो नाम का उच्चारण करने वाले हैं दीक्षा का नाम। जत जगते रत में कृष्ण बोलाया, कराइला चैतन्य कीर्तन प्रकाशिया। येते तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य, सर्वलोक तुम्हारे जाते हैं धन्य। तो उन्होंने कहा जत जगत रत में कृष्ण बोलाया, सारे जगत के जीवों को तुमने तुम क्या बुलवा रहे हो? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे
हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सारे जगत के जीवों की कृष्ण चेतना को जगा रहे हो। जयते का तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, इसी कारण से तुम्हारा नाम क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य। बोलिए जोर से जोर से। चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन का प्रकाश करने के लिए या प्रकाश करने वाले ऐसे चैतन्य महाप्रभु हाँ उनका ये नामकरण केशव भारती करते हैं। उस रात्रि में चैतन्य महाप्रभु वहां निवास करते हैं और बहुत अधिक नाचते हैं। संन्यास के बाद वो नृत्य करने लगे और अपने गुरु को भी केशव भारती ने सोचा मैं क्यों साथ रहूं, वो भी अपने शिष्य के साथ नाचने लगे। वहां फिर उनका कमंडल डंडा कहाँ गिर जाता है किसी को पता नहीं और एक दूसरे का आलिंगन करते हुए हाँ और लोटपोट होते हुए वो नाचने लगते हैं। फिर जैसे ही सुबह का समय आता है तो चैतन्य महाप्रभु अपने आध्यात्मिक गुरु से विदा लेते हैं और महाप्रभु फिर कहने लगते हैं अरण्य प्रविष्ट मोहि हयम सर्वथा प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाव जथा। महाप्रभु ने कहा मैंने संन्यास ग्रहण किया है, मैं अभी अरण्य में प्रवेश करूंगा। अरण्य में मीन्स वृंदावन जाऊंगा। महाप्रभु की ये आकांक्षा थी। चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मुझे वृंदावन जाना है। तो ऐसे महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। और ये श्लोक वास्तव में संन्यास के दूसरे दिन चैतन्य महा प्रभु जब निकल पड़े हैं उसका वर्णन है। चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल पड़े वृंदावन के लिए, और जैसे महाप्रभु वृंदावन के बारे में सोचा तो आकाशवाणी होती है कि अभी वृंदावन जाना आपके लिए उचित नहीं है, बाद में चले जाओ। तो नित्यानंद प्रभु उनको धोखा देकर राड देश नित्यानंद प्रभु, राढ़े जन्मिला प्रभु नित्यानंद, राड देश तो नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान है। राड देश वो स्थान है जहां गंगा नहीं बहती, वो राड देश है। हाँ, गंगा के पश्चिम तट का जो भाग है वो राड देश है। तो चैतन्य महाप्रभु निकल पड़े राड देश में और तीन दिन तक, हाँ, राड देश से तीन दिन करेला भ्रमण, तीन दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने राड देश में भ्रमण किया, जिसका वर्णन आगे आने वाले श्लोकों में होगा। और इसी का ही वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में विशेष रूप से किया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं 24 साल की आयु में, माघ मास के शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन था उस समय चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया। और वास्तव में आचार्य की टीका देते हुए कहते हैं कि ये संन्यास लीला चैतन्य महाप्रभु के दो चीजों को दर्शाता है। एक तो वैराग्य का ऐश्वर्य, हाँ, वैराग्य एक अनुपम ऐश्वर्य है, सर्वोपरि है, उसको महाप्रभु ने दिखाया। और ये भी स्थापित किया कि वास्तव में एक आचार्य गुरु और साधु को कैसे होना चाहिए, हाँ, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं। और दूसरा है इस जगत के पतित जीवों का उद्धार करने हेतु, या इस जीवों जगत के जीवों के प्रति उनका जो प्रेम है उसका वो एक्सप्रेशन है चैतन्य महाप्रभु का। इस कारण से महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं। और ये संन्यास परंपरा हमारे संप्रदाय में है, महान आचार्य ने संन्यास ग्रहण किया है। श्रील प्रभुपाद के बारे में भी आता है संन्यास का वर्णन। प्रभुपाद जब वहां थे, कलकत्ता में ही थे, तो उनके आध्यात्मिक गुरु उनके स्वप्न में आके कहते संन्यास ग्रहण करो। तो उनको लगता है ये कैसा सपना आ गया, थोड़ा सा डर लगने लगता है, कहते भयावह सपना था। लीलामृत आता है कि ये सपना कैसे था, भयावह था। फिर दूसरे बार सपना आता है जब वो लखनऊ में अपना बड़ा व्यवसाय स्थापित किया था, फैक्ट्री आदि। और फिर स्वप्न आता है वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अब संन्यास ग्रहण करो, तो वहां भी उनको लगता है अभी तो बच्चे हैं, फिर पत्नी है और भयावह स्वप्न है, तो कहते अभी इतने जल्दी संन्यास नहीं। फिर प्रभुपाद देखते कुछ ही दिनों में सारा फैक्ट्री आदि सब खत्म होता है, भागवतम का श्लोक उनको स्मरित होता है, यशाहम अनुग्रहनामे हरिषे तद्धनम क्षणे। हमारे संप्रदाय में कितने सारे आचार्यों का जो जीवन है केवल एक एक श्लोक ने बदला है। इवन शुकदेव गोस्वामी का भी, शुकदेव गोस्वामी का तो दो श्लोकों ने भी बदला है। और वहाँ मुकुंद और गदाधर के बारे में हम देखते हैं, वहां भी वर्णन आता है पुंडरीक विद्यानिधि की लीला में। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद भी, एक प्रभुपाद कहते हैं जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को मैंने पढ़ा गीता के एक श्लोक के, हाँ, गुरु की सेवा करना है सर्वोपरि है, ये के है गुरु नंदन है, तो वो भी परिवर्तन है वो श्लोक के कारण। और यहाँ जो व्यवसाय कर रहे थे सब कुछ उनसे छीना गया, तो प्रभुपाद को एक श्लोक स्मरण आया, यशाहम अनुग्रहनामि हरिषे तद्धनम क्षणे। भगवान जिस पर अनुग्रह करते हैं सर्वप्रथम उसकी सुविधाओं को छीन लेते हैं, उसका धन आदि को छीन लेते हैं, उसको छीन लेने से सारी चीजें अपने आप गिर जाती है, अपने स्थान में सब लोग उससे हट जाते हैं, वो ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है। तो फिर प्रभुपाद जब राधा दामोदर में आ गए तब स्वप्न आ गया, हाँ, कि अभी हाँ संन्यास ग्रहण करो, अभी वो तैयार हो गए थे। उनके गुरु भाई ने भी कहा अभय बाबू अभी कब तक ब्रज में ऐसे रहेंगे, संन्यास ग्रहण कीजिए, उसका प्रचार में सहायता होगी। तो वहां वो फिर संन्यास ग्रहण करते हैं, केशव किनसे ग्रहण करते हैं, प्रभुपाद केशव महाराज से, गौड़िया मठ से मथुरा में संन्यास ग्रहण करते हैं। और फिर संन्यास ग्रहण करके अपने गुरु के साथ, संन्यास गुरु के साथ फोटो खिंचवाया जाता है। और फिर कहा जाता है उस समय जो संन्यास लेने वाला भक्त है उसको अपने गुरु का गुणगान करना होता है। तो प्रभुपाद को कहा, तो प्रभुपाद ने संन्यास लिया है प्रीचिंग के लिए, और प्रीचिंग करना है अंग्रेजी भाषा में। तो संन्यास लेते अपने गुरु का जो गुणगान किया प्रभुपाद ने अंग्रेजी भाषा में, इतने प्रभुपाद दृढ़ थे, फिक्स थे कि मुझे क्या करना है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद संन्यास ग्रहण करते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास ग्रहण किया, और प्रभुपाद की यही शिक्षा है, चाहे आप किसी भी वर्ण और आश्रम में क्यों ना हो, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान के प्रति समर्पण, सेवा की समर्पण का भावना का मूल्य है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लीला की, श्रील प्रभुपाद की।